对，就الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. اس کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں. معرف القرآن جلد نمبر 3 ہماری ریفرنس بک ہوتی ہے جس میں سے ہم پڑھتے ہیں، اور آیت نمبر 33 اور 34 جو ابھی پڑھی گئی ان کے ہم معارف و مسائل اس کلاس میں پڑھ رہے تھے. ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے جرم و سزا کے چند قرآنی ضابطے بیان فرمائے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہی سزا ہے جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو یعنی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سوری چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے. یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. تو ان دونوں آیات کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو تمہید باندھی تھی کہ اس سے پیچھے جو آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے حابیل اور قابیل کا واقعہ قتل بیان کیا تھا اور اس کے جرم عظیم ہونے کا، اور پھر یہ بھی کہا تھا فرمایا تھا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک کو بچا لینا قتل ہونے سے پوری انسانیت کو بچا لینے کے مترادف ہے، جس سے کہ دین اسلام کا امن پسند ہونا اس آیت سے صاف ستھری طریقے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ دین اسلام تو امن کو فروغ دیتا ہے، اور جو سزائیں اور جہاد اگر کرتا بھی ہے تو وہ بھی امن کو فروغ دینے کے لیے ہی کرتا ہے. تو اصل جو ہے نا وہ تو امن ہے، وہ تو پیس ہے، چاہے وہ اندر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کا اطمینان وہ بھی دین اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، اور معاشرے کا اطمینان یہ بھی دین اسلام کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر مسلمان قرآن مجید کو چھوڑ کر کے اپنی چلانا شروع کر دے تو پھر تو دین اسلام رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پھر تو دین اسلام رہتا ہی نہیں ہے، پھر تو وہ کچھ اور بن گیا، کوئی اور دین بن گیا جس کے اندر قرآن ہی نہیں ہے، جس کے اندر قرآن کے احکامات ہی نہیں ہیں. تو اب وہاں پر اگر لوگ بھی پریشان ہیں، اندر سے بھی ٹینشن باہر سے بھی ٹینشن، تو بھائی وہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، دین اسلام کو تو نہیں فالو کیا جا رہا، کیونکہ دین اسلام تو قرآن بیسڈ ہوتا ہے نا، قرآن بیسڈ، رائٹ. قرآن کو نکال دو پھر بچا کیا اس کے اندر، بت قدائے تصورات بچے اور تو کچھ نہیں بچا، نعرے بچے بچے جھنڈے بچے اور دھوکے بچے، رائٹ. یہ بچ گیا نا پھر اس کے اندر، جب قرآن کو اپنے بیچ میں سے اللہ کا کلام نکال لیا پھر کیا بچا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو پھر سیدھی سی بات ہے ہمارے یہاں جو چل رہے ہیں وہ قرآن کو نکال دینے کی وجہ سے، اور نام اسلام کا لگایا ہوا ہے، رائٹ، نام اسلام کا لگایا ہوا ہے. تو بھائی تمہارے نام لگانے سے کیا ہوتا ہے بھائی. تو بہرحال صفحہ نمبر 117 تک ہم پہنچ گئے تھے. یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ بعض جرائم میں حق العبد کی حیثیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور بعض میں حق اللہ کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے. تو اس تمہید کے بعد حضرت آگے فرماتے ہیں کہ اب سمجھیے کہ جن جرائم کو کوئی سزا قرآن و سنت نے متعین نہیں کی، بلکہ हुक्काम की सवाबदीद पर रखा, गवर्नमेंट की सवाबदीद पर उनके जैसा वो ठीक समझते, जैसा वो ठीक देखते हैं। सवाब का मतलब होता है ठीक, और दीद कहते हैं देखने को। तो उनकी जजमेंट, अंग्रेजी में उसको जजमेंट भी कहा जाएगा। तो जिसका जिसकी सजा हुक्काम की सवाबदीद पर रखी है, उन सजाओं को शरी इस्तेराहात में तअज़ीरात कहा जाता है। तअज़ीर का लफ्ज जो है वो अज़र युअज़्ज़िरु तअज़ीरन से निकला, और इसका मतलब जो है वो अदब सिखाना या किसी को सजा देना। मकसद यही है कि अदब सिखाना, ठीक है, सजा देकर के अदब सिखाना, ठीक करना, इसको तअज़ीरात कहा जाता है। और जिन जरायम की सजाएं कुरान सुन्नत ने मुतय्यन कर दी हैं, वो दो किस्म पर हैं। एक वो जिनमें हक़ुल्लाह को गालिब करार दिया गया है, अल्लाह का हक गालिब है, उनकी सजा को हद कहा जाता है, जिसकी जमा हुदूद है। दूसरे वो जिनमें हक़ुल अब्द को अज़रु शरा गालिब माना गया है, यानी डोमिनेंट जो है ना वो हक़ुल अब्द है जिन सजाओं में, तो उनको उस किस्म की सजाओं को कसास कहा जाता है। कसास, हद का मतलब तो हम अच्छी तरह जानते हैं, उर्दू में भी लफ्ज हद इस्तेमाल होता है, लिमिट करना, ठीक है। और कसास जो है ना, ये बदला लेना बराबर बराबर का, ठीक है, ये इसका मफहूम समझ लें इसका। तो कुरान करीम ने हुदूद व कसास का बयान पूरी तफसील व तशरीह के साथ खुद कर दिया है, ठीक है, थोड़ी सी तफसील और तशरीह के साथ खुद कर दिया है, सही है। तो तफसील और तशरीह भी है इसके अंदर, लेकिन कुरान मजीद ने हद का स्पेसिफाई भी कर दिया। बाकी ताजीरी जराइम की तफसीलात को बयानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुक्काम वक्त की सवाबदीद पर छोड़ दिया है, यानी हदीसे मुबारका और जो वक्त की गवर्नमेंट होगी तो उसकी सवाबदीद पर छोड़ दिया है तासीरात को। तो तीन किस्म की सजाएं होंगी ना, हुदूद, क़िसास, ताज़ीरात, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो मुल्कों के अंदर अपने कवानीन होते हैं ना, तो उनको सिर्फ ताज़ीरात कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट की सवाबदीद के ऊपर जो भी गवर्नमेंट होगी, चाहे वो बादशाह की गवर्नमेंट हो, चाहे जो है वो गवर्नमेंट ऑफ द सो कॉल्ड पीपल, राइट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, तो वो पीपल की गवर्नमेंट हो, पता नहीं पीपल किस बला का नाम है, हम तो बस एक दरख्त को जानते हैं जिसका नाम पीपल का दरख्त होता है, ठीक है, और एक पार्टी भी है पीपल पार्टी, राइट, बाकी कोई पीपल शीपल तो अवाम होते हैं, वो अवाम क्या होते हैं, वो अनाम होते हैं, भेड़, यानी जिनको कहते हैं मवेशी, ठीक है। तो पीपल का तो एक अजीब ही मामला है, पीपल का दरख्त है या मवेशी हैं या कोई पार्टी का नाम है या क्या है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये तो पीपल के गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स दरख्त है ना भाई, यही समझ में आता है, पीपल के दरख्त की गवर्नमेंट हो सकती है, बाकी होती होती कोई नहीं है। बेवकूफ बनाना है तो बनाओ भी किसी और को, अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं बनते आपसे बेवकूफ। बाकी जो है ना वो बादशाह सलामत की गवर्नमेंट है या छुपे हुए कोई पीछे बादशाह बादशाहों की गवर्नमेंट है, जिसकी भी है वो होती है गवर्नमेंट। खैर, खुलासा ये है कि कुरान करीम ने जिन जराइम की सजा को बतौर हक़ुल्लाह मुतय्यन करके जारी किया है, उनको हुदूद कहते हैं। अल्लाह का हक मुतय्यन करके उन सजाओं को हुदूद कहते हैं, और जिनको बतौर हक़ुल अब्द जारी फरमाया है उनको क़िसास कहते हैं, और जिन जराइम की सजा का तायुन नहीं फरमाया उनको ताज़ीर कहते हैं। ये इस्लामी शरीयत बात हो रही है, ठीक है। तो हुदूद, क़िसास और ताज़ीर, सजा की इन तीनों किस्मों के अहकाम बहुत सी चीजों में मुख्तलिफ हैं। जो लोग अपने उर्फ आम की बिना पर हर जुर्म की सजा को ताज़ीर कहते हैं और शरई इस्तराहात के फर्क पर नजर नहीं करते, उनको शरई अहकाम में बकसरत मुगालते पेश आते हैं, ठीक है। तो आप जब कुरान मजीद को नहीं देख रहे, तो अब आपको, यानी आप देख कहीं और रहे हैं और सुन आप कहीं और रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको कंफ्यूजन ही होगी ना, ठीक है, यानी आप फॉर एग्जाम्पल आप एक पीपल के दरख्त के ऊपर फोकस किए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन पीछे से आवाजें जो है ना वो बकरे की आ रही हैं, तो आपको ये लगेगा ना जैसे पीपल के दरख्त में से आवाजें आ रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना भाई। जिधर की आवाज पे फोकस कर रहे हो तो उधर ही तुम अपनी निगाहों को भी फोकस करो ना, निगाहें कहीं और फोकस करी हुई हैं, कान कहीं और फोकस किए हुए हैं, तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन। यही मामला जो है वो इन लोगों का भी होता है कि जो कि शरीर इस तरह हाथ को तो देख नहीं रहे होते, और लोगों की बातें शरीयत के बारे में सुन रहे होते हैं कि ये ऐसा है, ये गलत है, ये सही है, ये वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह के बंदे, जब शरीयत की बात तुम सुन रहे हो लोगों से, तो शरीयत को देखो भी तो सही ना, ठीक है ना, यानी अपनी निगाहों को अलाइन करो ना अपने कानों के साथ, ठीक है, पे अटेंशन टू वेयर यू आर लुकिंग, ठीक है, तब बात समझ में आएगी। अल्लाह ने कान और आंखें दोनों दिए हैं इल्म के हुसूल के लिए, तो फोकस करके बात समझ में आती है, विदाउट फोकस कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ कंफ्यूजन होती है। तो वही हजरत फरमा रहे हैं, बकसरत मुगालते पेश आते हैं, ठीक है, फोकस पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है हम लोगों को आजकल के कंप्लीटली डी फोकस जमाने में, फोकस के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है, तब हमें कुछ समझ में आएगा। ताजीरी सजाएं हालात के मातहत हल्की से हल्की भी की जा सकती हैं, और सख्त से सख्त भी, और माफ भी की जा सकती हैं, ठीक है। हालात किस चीज को कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में जो है ना वो आप इसको कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको आप माहौल भी कह सकते हैं उर्दू में, माहौलुन, ये असल में अरबी का लफ्ज है, तो माहौलुन, हौल कहते हैं इर्द गिर्द को, ठीक है, जो अराउंड आपका एरिया होता है ना उसको हाउलुन कहते हैं, तो मा हाउलुन मीन्स वॉट इज अराउंड यू, वॉट इज अराउंड यू, ठीक है, तो इसी को अंग्रेजी में कॉन्टेक्स कहते हैं, इसी को उर्दू में सियापो सबाक भी कहते हैं, ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, और इसी को जो है वो अरबी में मा हाउलुन कहते हैं, वॉट इज अराउंड यू, ठीक है। तो अब जो हाकिम वक्त जो ताजीरी सजाएं इन्फोर्स करता है वो माहौल के हिसाब से इन्फोर्स करता है, ठीक है, तो वो सख्त से सख्त भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द माहौल इज, और वो नरम से नरम भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट द माहौल इज, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना ये इतना अहम है, इतना अहम है कि आपके सामने ये इसकी अहमियत खुलती चली जाए और आप यानी हैरान होते चले जाएं कि हर चीज कितना कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये तो ताजीरी सजाओं के बारे में बात हो गई, तो इनमें हुकाम के इख्तियारात वसीय हैं, और हदूद में जो हदूद अल्लाह ताला ने खुद अपने कुरान मजीद में सेट कर दी हैं, तो उनमें किसी हुकूमत या किसी हाकिम व अमीर को अदना तगैयुर व तबद्दुल या कमी बेशी की इजाजत नहीं, ठीक है, क्यों, इसलिए कि हुदूद की सजाएं किसने सेट करी हैं, किसने सेट करी है भाई, अल्लाह ने। अल्लाह कौन है, जो कि माहौल को जानता है और हर जमाने और हर जगह के माहौल को जानता है, ठीक है ना, हर जगह के और हर जमाने के माहौल का इल्म किसके पास है, सिर्फ अल्लाह के पास है, और किसी के पास नहीं है, सिर्फ अल्लाह के पास है। तो उसने जो हुदूद की सदाएं मुतय्यन कर दी, तो वो हाकिम की तरह नहीं है कि उसको अभी के किसी जगह के माहौल का पता है और किसी जगह के माहौल के बारे में उसको पूरा नहीं पता, नाकिस पता है, या गेस वर्क चल रहा है, या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हाकिम के पास तो वो वाली नॉलेज नहीं है ना जो अल्लाह के पास है। तो अल्लाह का जो हुक्म है वो भी माहौल के मुताबिक ही है, वो भी माहौल के मुताबिक है, लेकिन फर्क हाकिम में और अल्लाह में क्या है कि अल्लाह ताला के पास हर किस्म के और हर जमाने के और हर मकान के माहौल का इल्म है, ठीक है, उसी को तो हम अल्लाह मानते हैं, जिसके पास नहीं है उसको हम अल्लाह को थोड़ी मानते हैं, ठीक है। अल्लाहु खालिकु कुल्ल शैइन व हुवा कुल्ल शैइन व हुवा अला कुल्ल शैइन वकील, ठीक है। हदूद में किसी हुकूमत या किसी हाकिम अमीर को अदना तगय्युर व तबद्दुल या कमी बेशी की इजाजत नहीं है, ठीक है, और ना जमान व मकान के बदलने का इन पर कोई असर पड़ता है, क्योंकि जमान व मकान का कामिल इल्म अल्लाह के पास है, ठीक है, तो उसने उसके मुताबिक ही हुक्म लगाया। ना किसी अमीर व हाकिम को उसके माफ करने का हक है। शरीयत इस्लाम में हुदूद सिर्फ पांच है, डाके की हद, चोरी की हद, जिना की हद, तोहमते जिना की हद, जिसको कजफ भी कहते हैं, ठीक है, तो इन सब की सजाएं पांच, ठीक है, एक हद इर्तिदाद भी लिखा है किताबों के अंदर, वो छठी हद कहलाती है, यहाँ पे हजरत ने उसका जिक्र नहीं किया है। ये सजाएं कुरान करीम में मंसूस है। पांचवी शराब, यानी ये चार हो गई थी ना, तो पांचवी जो है वो शराब खोरी की हद है, जो इजमाए सहाबा कराम से साबित हुई, ठीक है, इजमाए सहाबा कराम, ये हुक्मरान की ताजीर नहीं कहलाएगी, ठीक है, ये सहाबा कराम का इजमा और हुक्काम की ताजीर को हम कंफ्यूज नहीं करें, ठीक है, क्योंकि हुक्काम की ताजीर जो है ये हाकिम वक्त की बात हो रही है उसमें, और सहाबा कराम का इजमा ये अल्लाह का सिग्नेचर, ठीक है, ये अल्लाह का सिग्नेचर है। सहाबा कराम ने इल्मी तौर पर कंसेंसस जब कर लिया किसी बात के ऊपर, अब उसके ऊपर अल्लाह का स्टैंप लग गया, तो ये भी अल्लाह का ही हुक्म बन गया ना, ठीक है। जब ही शरीयत के जो माखज होते हैं उनमें ये तीन होते हैं सबसे अहम, और कयास जो है वो इनके ऊपर, फिर कयास करना वो वैसे तो चौथा भी कहलाता है कयास, लेकिन कयास जो है ना वो इनमें से किसी के ऊपर फिर आप एनालॉजी बना करके हुक्म लगा रहे होते हैं, तो इस वजह से कयास को भी इसमें शामिल करते हैं, लेकिन असल में ये तीन है, कुरान, हदीस मुबारक और इज्म, ठीक है। तो ये जो पांचवी शराबखोरी की हद है, जो इजमाए सहाबा कराम से साबित हुई है, इस तरह कुल पांच जराइम की सजाएं मुतय्यन हो गई, जिनको हुदूद कहा जाता है। अच्छा, ये नीचे जो मैंने लिखा है, एक्चुअली इर्तिदाद की सजा को मिलाकर अक्सर फुकहा ने हुदूद की तादाद 6 बयान की है, तो मेरे मेरी नजर अभी इसके ऊपर पड़ी है, वरना मैंने इर्तिदाद का कई बार पढ़ा था, अजीब, तो ये हो गई फिर 6 हो गई ना, इस तरीके से मिला करके अक्सर फुकहा के नजदीक इर्तिदाद की हद पे इसमें शामिल है। अच्छा, ये सजाएं जिस तरह कोई हाकिम व अमीर कम या माफ नहीं कर सकता, इसी तरह तौबा कर लेने से भी दुनियावी सजा के हक में माफ नहीं होती। हाँ, आखिरत का गुनाह मुखलसाना तौबा से माफ होकर वहां का खाता बेबाक हो जाता है, यानी कुछ भी बाकी नहीं रहता, बे और बाक, बाक का लफ्ज है वो बाकी, ठीक है, और बे का मतलब आपने बाकी की नफी कर दी, तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रहा, तो आखिरत का गुनाह जो है ना वो तौबा से माफ हो जाता है और कुछ भी बाकी नहीं रहता उसके अंदर, लेकिन दुनियावी सजा फिर भी मिलती है। इनमें से सिर्फ डाके की सजा में एक इस्तिस्ना है कि डाकू अगर गिरफ्तारी से कबल तौबा कर ले और मुआमलात से उसकी तौबा पर इत्मीनान हो जाए, तो भी ये हद साबित हो जाएगी, गिरफ्तारी के बाद की तौबा मोतबर नहीं है। आपको याद होगा कि जब हम तर्जुमा पढ़ रहे थे तो उसी वक्त जो है ना वो हजरत फुजैल बिन अयाज रहमतुल्लाह का तस्करा भी पढ़ रखा कि हुआ था क्लास के अंदर, जो कि डाकू, और सारी दुनिया को पता कि वो डाकू, आज तक जो है वो उनका नाम लेकर के दुआ की जा रही होती है, अल्लाह डाकुओं के सरदार को आपने वलियों का सरदार बना दिया, तो उनके डाके का सबको पता, लेकिन उनको सजा नहीं मिली, ठीक है, क्यों? इसलिए कि शरीयत का उसूल यह है कि अगर इसके अंदर जो है ना वो तौबा कर ली और बाकी अहवाल से साबित भी हो रहा है कि हाँ भाई इनकी उन्होंने वाकई तौबा कर ली है, तो फिर उनकी सजा नहीं होगी, वादा माफ गवाह, याद ही मुझे पता, या यहाँ पे कहाँ से अप्लाई हो रहा है चीज, तो डाकू अगर गिरफ्तारी से कबल तौबा करे और मामला से इसकी तौबा पर इत्मीनान हो जाए, तो भी यह हद साबित हो जाएगी कि गिरफ्तारी के बाद की तौबा मोतबर नहीं है। इसके अलावा दूसरी हुदूद तौबा से भी दुनिया के हक में माफ नहीं होती, ख्वाह यह तौबा गिरफ्तारी से कबल से हो या बाद में, ठीक है? गिरफ्तारी यानी अगर गिरफ्तार हो गया है ना तो फिर वो सजा मिलेगी। तमाम ताजीरी जराइम में हक के मवाफिक सिफारिशात सुनी जा सकती हैं, हुदूदुल्लाह में सिफारिश करना भी जायज नहीं है और उनका सुनना भी जायज नहीं। कितनी ज्यादा अल्लाह ताला ने सख्ती रखी है अपने हदूद के अंदर कि यानी हद जब साबित हो गई, जिन गवाहों की जरूरत थी वो गवाह मिल गए, साबित हो गई, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, अब सजा सादिर हो गई उसके ऊपर ना, अब यानी ऐलान हो गया सजा का, ठीक है? अब जो है ना वो सिफारिश करना भी जायज नहीं है, सिफारिश सुनना भी जायज नहीं, यानी उसकी तरफ इंतफात करना ही जायज नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी सख्त ममानियत फरमाई है। हुदूद की सजाएं आमतौर पर सख्त हैं और उनके नफाज का कानून भी सख्त है कि इनमें किसी को किसी कमी बेशी की किसी हाल में इजाजत नहीं है, ना कोई उनको माफ कर सकता है। जहां सजा और कानून की यह सख्ती रखी गई है, वहीं मामले को मुतदल करने के लिए तकमील जुर्म और तकमील सबूत जुर्म के लिए शर्तें भी नहायत कड़ी रखी गई हैं। इन शराइत में से कोई एक शर्त भी मफकूद हो तो हद साकित हो जाती है। यानी यहां चार गवाह चाहिए, वहां पे अगर तीन मिले हैं, चौथा नहीं मिल रहा तो हद साबित हो जाएगी, ठीक है? बल्कि अदना सा शुबो भी सबूत में पाया जाए तो हद साकित हो जाती है। इस्लाम का मुसल्लम कानून इसमें यह है कि अल-हुदूदु तुंदरी बिश्शुबुहात, यानी हुदूद को अदना शुबो से साकित कर दिया जाता है। तो बात वही जो पिछली क्लास में भी हो रही थी कि मकसद जो है ना वो बंदे मारना नहीं है और अजियतें पहुंचाना नहीं है, बल्कि मकसद जो है वो इंसदादे, आजकल तो खाली इंसदादे दहशतगर्दी होता है ना, लेकिन पता नहीं कि यानी इस चीज को दहशतगर्दी कहा जाता है, जो कि बेशक दहशतगर्दी है ऑफ कोर्स, ठीक है? लेकिन जो आपके अपने मुल्क के अंदर, मुल्क के अपने शहरी जो है वो एक दूसरे को जो दहशत फैलाई हुई है उसको आप दहशतगर्दी में क्यों नहीं आप शामिल कर रहे भाई? तो इंसदाद कत्ल व गारत गरी जो है वो उसको आप दहशतगर्दी में शामिल कर लें तो फिर शायद कुछ फायदा हो जाए, ठीक है? लोगों की जाने कुछ महफूज हो जाए, कुछ तो कमियां है ना उसके, लोग नहीं करते। यहाँ भी यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए कि जिन सूरतों में हद शरई किसी शुबो या किसी शर्त की कमी की वजह से साकित हो जाए, तो ये जरूरी नहीं कि मुजरिम को खुली छुट्टी मिल जाए जिससे उसको जुर्म पर और जुर्रत पैदा हो, बल्कि हाकिम उसके मुनासिब हाल उसको ताजीरी सजा देगा। और शरीयत की ताजीरी सजाएं भी अमूमन बदनी और जिस्मानी सजाएं हैं जिनमें इबरत अंगेज होने की वजह से इंसदादे जराइम का मुकम्मल इंतजाम है। फर्ज कीजिए कि जना के सबूत पर सिर्फ तीन गवाह मिले और गवाह तीनों के तीनों गवाह आदिल हैं, सिक्का हैं, यानी ट्रस्टवर्दी हैं, जिन पर झूठ का शुबा नहीं हो सकता, मगर अजरूए कानून शरा चौथा गवाह ना होने की वजह से उस पर हद शरी जारी नहीं हो। लेकिन इसकी ये मानी नहीं कि उसको खुली छुट्टी दे दी जाएगी, बल्कि हाकिम वक्त उसको मुनासिब ताजीरी सजा देगा जो कोड़े लगाने की सूरत में होगी, या चोरी के सबूत के लिए जो शराइत मुकर्रर हैं उनमें कोई कमी या शुबो पैदा होने की वजह से उस पर हद शरई हाथ काटने की जारी नहीं हो सकती। तो उसका यह मतलब नहीं कि वो बिल्कुल आजाद हो गया, बल्कि उसको दूसरी ताजीरी सजाएं हस्बे हाल दी जाएंगी, ठीक है? तो अब चूंकि हद का मामला बहुत ही स्पेसिफिक है ना, तो हद में आगे पीछे नहीं किया जाता, यानी इवन सिफारिश सुनने को की इजाजत नहीं है, ठीक है? तो उसमें जो सेट है बस वो सेट है, उसमें आगे पीछे बर्दाश्त यानी उसको कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने ये जो गवाह रखे हैं तो इनकी वजह से ही साबित होता है, और अगर ये गवाह नहीं मिले या शराइत पूरी नहीं हुई तो अब वो साबित नहीं हो सकता, ठीक है? ये मकसद नहीं है, ठीक है? बल्कि गवाहों की कमी होगी, जैसे तीन गवाह मिल गए ना, ठीक है? तो अब तीन गवाहों से जो है वो उसका गुनाह वो तो साबित हो गया, ठीक है। लेकिन हद की शरायत अल्लाह ताला ने ऐसी एक्सप्लिसिट रखी है, ऐसी स्पेसिफिक रखी है कि उनके ऊपर ही वो हद वाली सजा जारी की जाएगी, ठीक है। तो अब वो वाली सजा जो है ना, वो शरायत में कमी हो गई तो पूरी नहीं की जाएगी, तो वो जारी नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन साबित तो हो गया है ना वो गुनाह, वो जो जुर्म था वो साबित तो हो गया है ना, तो अब हाकिम जो है वो ताजीरी सजा यानी अपने सवाबदीद के मुताबिक जो वो सजा देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। तो उसी वजह से फिर दूसरे किस्म की सजा जो है ना वो हाकिम वक्त दे सकता है, और वो भी मकसद क्या कि भाई ताकि कोई दूसरा जो है ना वो बंदा ना करे वाला काम। इसकी एक और मिसाल जो जहन में आती है वो ये कि जैसे चोरी उसके ऊपर साबित तो नहीं हो रही, क्योंकि उसने जो जो शराइत थी वो सारी शराइत जो है ना वो चोरी के अमल को करने की पूरी नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन बाकी सारी चीजें साबित हो रही हैं कि इसने चोरी के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी, ये घर के अंदर घुस गया था, ये कर लिया था, वो कर लिया था, तो अब ये बात तो साबित हो रही है कि हाँ इसका पक्का इरादा था चोरी करने, ठीक है। तो अब जो है वो जब हाकिम को ये बात साबित हो रही है तो फिर वो उसको रोकने के लिए कभी आइंदा लोग इस किस्म का इरादा भी ना करें, जैसी यानी इसको तो मौका नहीं मिला वो कर नहीं सका चोरी, लेकिन अगला बंदा इरादा करेगा चोरी करने के लिए तो उसका मौका मिलेगा तो वो तो फिर किसी का माल चोरी करेगा, तो इसके लिए फिर ताजीरी सजा जो है वो जारी की जा सकती है, क्योंकि मकसद इंसदादे जराइम ही है। कसास की सजा भी हुदूद की तरह कुरान में मुतय्यन है कि जान के बदले में जान ली जाए, जख्मों के बदले में मसावी जख्म की सजा दी जाए, लेकिन फर्क यह है कि हुदूद को बहैसियत हक़ुल्लाह नाफिज किया गया है, अगर साहिब हक इंसान माफ भी करना चाहे तो माफ नहीं होगा, ठीक है। यानी वही बात के चोरी जिना डाका और तोहमत जिना और ये शराबखोरी, ठीक है, तो इसमें कोई माफ भी नहीं कर सकता ना इसके अंदर, तो उसको तो जारी किया जाएगा लेकिन कसास के अंदर रहता है, ऐसा नहीं रहता। तो फर्क यह है कि हुदूद को बहैसियत हक़ुल्लाह नाफिज किया गया है, अगर साहिब हक इंसान माफ भी करना चाहे तो माफ नहीं होगा, यानी चोरी जिसकी हुई है वो माफ कर देगा, चलो मेरी चोरी मैं माफ करता हूँ उसको, सजा नहीं जरूरत नहीं, तो फिर वो माफ नहीं किया जाएगा, और हद जो है ना ये साकित नहीं होगी। मसलन जिसका माल चोरी किया वो माफ भी कर दे तो चोरी की शरी सजा माफ नहीं होगी, बखिलाफ कसास के कि इसमें हक़ुल अब्द की हैसियत को कुरान और सुन्नत ने गालिब करार दिया है। यही वजह है कि कातिल पर जुर्म जुर्मे कत्ल साबित हो जाने के बाद उसको वली मक्तूल के हवाले कर दिया जाता है, वो चाहे तो कसास ले ले और उसको कत्ल करवा दे और चाहे माफ कर दे, ठीक है। अब इसके अंदर कुदरतन फिर वही बात साजिश के दिल में आ रही है जो कि कई दफा पहले भी आपके साथ रिपीट की जा चुकी है, लेकिन वो क्या बात हमसे पूछे तो बहुत ज्यादा फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कौन सी बात फिर याद आ रही है। वो ये बात है कि सुबह क्लास में जो बात होती है शाम में वही बात रिपीट हो जाती है, तो हम फकीरों के लिए आसानी हो जाती है, ठीक है। तो सुबह क्लास में भी वही बात हो रही थी जो कि एक्चुअली जुमे के बयान में भी काफी तफसील के साथ बात हुई थी, कि वो जो जबीहा वाला मसला था ना, तो जबीहे वाले मसले में काफिर मुसलमानों के सामने आकर के ना अकली दलील पेश करते थे कि जिसको अल्लाह ने मार दिया उसको तुम मुर्दार कह करके नहीं खाते हो, और जिसको तुम मारते हो उसको तुम जबीहा कह करके खा लेते हो, तो ये कौन सी अकल की बात हुई भाई। तो चंद मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि भाई काफिर जो है ना वो हमें ये बातें बोल रहे हैं, और बड़ी अकल वाली बात बोल रहे हैं कि हाँ अल्लाह का मारा जो है वो ज्यादा अफजल होता है, उसको हमें खाना चाहिए, और जो हमारा मारा होता है तो जो कि हम जो है वो कमतर हैं अल्लाह के मुकाबले में, तो हमारा जो मारा होता है तो वो तो नहीं खाना चाहिए, तो बड़ी अकल वाली बात है। लेकिन जवाब उनको क्या मिला कि अल्लाह का हुक्म, ठीक है, जब तुमने अल्लाह को हकीम और खबीर मान लिया, ठीक है, तो फिर अल्लाह के हुक्म को ही मानो और इन अकली दलाइल को जो है ना तुम फुटबॉल बना दो, अगली दलील को जूते की नोक पर रखो, जिस तरह फुटबॉल को जूते की नोक पर रखा जाता है, ठीक है? तो वट एवर अल्लाह डिसाइड एज लॉ इज ओवर अकली दलील, ठीक है? अब तुम अगर ये कहते हो कि नहीं मेरी अकल, नाउज़ बिल्लाह नाउज़ मेरी अकल ज्यादा बड़ी है अल्लाह की हिकमत के मुकाबले में, तो फिर तुम बात करो आगे, जो करना है करो फिर तुम, उसके बाद फिर तुमसे बाद में निपटा जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर तुम ये बात मानते हो कि मेरी अकल जो है ना वो अल्लाह की अकल, अल्लाह की हिकमत से जो है वो कमतर है, तो फिर तुम ये आगे से क्यों बहस कर लो, ठीक है? तो फिर इसमें भी ये मामला है कि भाई अब कसास में ऐसा क्यों कर दिया, खाने के बंदा मर गया कसास के अंदर, तो अब उसमें जो है ना तो चोरी जो है ये तो बड़े कमतर दर्जे की चीज है, भाई 10 दिरहम से ज्यादा किसी ने चोरी कर ली तो 10 दिरहम से ज्यादा भी कोई बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात तो नहीं हो रही ना, ठीक है? तो इतने पैसे अगर किसी ने चोरी कर लिए तो उसका हाथ काटने का हुक्म दिया जा रहा है, ठीक है ना? और वहां पे जो है वो चोर यानी जिसका माल चोरी हुआ है वो माफ भी कर दे, फिर भी जो है वो माफी नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, तो ये तो अकल वाली बात नहीं है। जबकि उधर जो है वो बंदा मर गया पूरा का पूरा है, और वहां पे जो है ना वो वलियों को इजाजत दी जा रही है कि आप अगर माफ करना चाहें तो आप माफ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बात अकल में आ रही है, ठीक है? नहीं, ठीक है, मेरी अकल इतनी बड़ी है ही नहीं कि उसके अंदर ऐसी बातें आ जाएं, ठीक है? भाई सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूंगा कि भाई मेरी तो अकल इस काबिल ही नहीं है कि उसके अंदर ये चीजें आ जाएं, तो आपकी अकल इस काबिल है कि उसमें ये चीजें आ जाएं, तो माशाल्लाह आप हकीमुल उम्मत टाइप के कोई इंसान होंगे फिर, ठीक है? लेकिन मेरी अकल में इतनी बात जरूर आती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी बात जरूर आती है कि मेरी अकल की कोई हैसियत ही नहीं, ठीक है? मेरी अकल की कोई हैसियत ही नहीं है, आए कोई चीज तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो सुभान अल्लाह, राइट? आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना आए तो सुभान अल्लाह, ठीक है? कि अल्लाह की हिकमत जो है ना वो नाकिस नहीं है, अल्लाह की हिकमत में कोई कमी नहीं है, इसको कहते हैं सुभान अल्लाह, ठीक है? तो बस जिसकी अकल में मैं अपनी क्या क्या तारीफ करूं, लेकिन उसूल की बात है ना कि जिसकी अकल में ये बात आ गई ना बस उसका काम हो गया कि मेरी अकल की कोई हैसियत ही नहीं है, अल्लाह की हिकमत के मुकाबले मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, इतनी अकल काफी है, ईमान वाले के ईमान के लिए इतनी अकल काफी है, ठीक है? बाकी आए ना आए वो हमें उससे कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है? अल्लाह का फैसला है कि कहाँ अल्लाह का हक ऊपर और कहाँ बंदे का, ठीक, कहाँ क्या बताओगे तुम, ना समझ नहीं आते। अच्छा तो ये बात है सीधी सी, बहुत सारा सी कॉमन सेंस वाली अकल है। साहबा कराम मुफ्ती तो इस्पानी दामत बरकात तुम की क्या बात है, उन्होंने जो है ना अपना जो मकाला पेश किया था ना तजद्दुद वाला मकाला, उन्होंने जुमला था ना वो यही था कि साहबा कराम का जब टाकरा हुआ ना रोमन सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन से, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी मरूब नहीं हुए, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन थी, इतना कल्चरली जो है वो सोफिस्टिकेटेड वो लोग थे, लेकिन सहाबा के ऊपर कोई असर नहीं हुआ उनकी इस सारी की सारी एडवांसमेंट्स का। क्यों? सादा सी बात थी, सहाबा को अल्लाह का पता था कि अल्लाह कौन है, ठीक है? और सहाबा को दीन इस्लाम को पता था कि दीन इस्लाम क्या है, ठीक है? अल्लाह का दीन है जो नबी अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन के वास्ते हम तक पहुंचाए, ठीक है? बस जब ये बात हो गई तो अब कितनी ही सो कॉल्ड एडवांस सिविलाइजेशन हो, कितना ही सोफिस्टिकेटेड कल्चर हो, क्या वो कायनात के खालिक और मालिक के बताए हुए तरीके से ज्यादा अफजल हो सकता है? ऑब्वियसली नॉट, कॉमन सेंस की बात है, कोई उसके ऊपर आपको जो है वो मंतक की दलीलें झाड़ने की कोई जरूरत नहीं है उसके लिए आपको, ठीक है ना? यानी एब्सोल्युटली 2 + 2 = 4 जितना हम सिंपल समझते हैं ना उससे भी ज्यादा सिंपल बात है, सीधी सी बात है भाई, दीन इस्लाम को कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत ही कोई नहीं है, सीधी सी बात है। खैर तो यहाँ पर कहीं मतलब है भाई के शरीयत के क्या अहकामात हैं, वो कैसे नाफिज होते हैं, तो वो तो फिर वो फुकहा का तो पूरा का पूरा शुबा है, उसकी बात नहीं कर रहे थे हम यहाँ, बिल्कुल सॉमन कॉमन सेंस उसूलों की बात कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल और सादा से उसको। अच्छा ओ कहाँ तक पहुंच गया, तो चोर चोरी का जो है ना वो माफ भी कर, बखिलाफ कसास के इसमें हक उपलब्ध की हैसियत को कुरान सुन्नत ने गालिब करार दिया है। यही वजह है कि कातिल पर जुर्म में कत्ल साबित हो जाने के बाद उसको वली मकतूल के हवाले कर दिया जाता है, वो चाहे तो कसास ले, चाहे तो कत्ल करा दे और चाहे तो माफ कर दे। इसी तरह जख्मों के कसास का भी यही हाल है, ये बात आप पहले मालूम कर चुके हैं कि हुदूद या कसास के साकित हो जाने से लाजिम नहीं आता कि मुजरिम को खुली छुट्टी मिल जाए, बल्कि हाकिम वक्त आजीरी सजा जितनी और जैसी मुनासिब समझे दे सकता है। इसलिए ये शुभ ना होना चाहिए कि अगर खून के मुजरिम को औलियाए मकतूल के माफ करने पर छोड़ दिया जाए तो कातिलों की जुर्रत बढ़ जाएगी और कत्ल की वारदात आम हो जाएंगी, क्योंकि इस शख्स की जान लेना तो वली मकतूल का हक था, उसने माफ कर दिया, लेकिन दूसरे लोगों की जानों की हिफाजत हुकूमत का हक है, दूसरे सिटीजन्स की जानों माल वगैरह का हिफाजत हुकूमत का हक है। यानी उस यानी यहाँ पर हक का जो लफ्ज है ना वो फर्ज के मानी में हम अगर समझ सकते हैं, हुकूमत का फर्ज है जानो माल की हिफाजत करना, तो वो इस हक के तहफ्फुज़ के लिए उसको उम्र कैद की या दूसरे किस्म की सजाएं देकर उस खतरे का इंसदाद कर सकती है। ठीक है, तो अल्लाह कुरान मजीद में क्या फरमाते हैं कसास के बारे में, वलकुम फिल क़िसासे हयातुन, कि तुम्हारे लिए क़िसास में हयात है, जिंदगी है, या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तकून, ए अकल वालों, ए लुब वालों, क़िसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है। क्या मतलब, एक बंदे को तुमने अगर इस तरीके से क़िसास की सजा दे दी ना, तो तुम्हारे मुआशरे के अंदर ये जो कत्लो गारत गरी है ना, ये नहीं चलेगी, ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि सही मायनों में जब इस्लाम का निजाम होता था तो क्राइम रेट जो है वो नहीं होते थे, ठीक है, कत्ल वगैरह का कोई तस्वर भी नहीं कर सकता था, लेकिन जहां पर नहीं था कभी भी, वहां पे हमेशा से क्राइम रेट्स बहुत बढ़े हुए हैं, और बाकी जगहों पर भी है। अब वहां पर कुछ जगहों पर तो बहुत छोटी सी जगह होती है ना, छोटे से मुल्क होते हैं, हम उनको मिसाल बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई वहां पर भी तो क्राइम रेट जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है, या है ही नहीं वहां पे क्राइम रेट, तो भाई आप ये देखें ना वो कितना साइज है इस मुल्क का, उसकी पॉपुलेशन किस किस्म की पॉपुलेशन है, और कितने कैमरे लगाए हुए उन्होंने, ठीक है, और कितना जो है ना उन्होंने यानी ऐसा पुलिस सिस्टम बनाया हुआ है कि किसी की मजाल नहीं है कि वो उनसे भाग सके और उनसे जो है वो निकल सके, ठीक है, सिवाय उन लोगों के जो कि ऐसा अपनी जिंदगी गुजारते हैं कि उनको आकर के किसी को कतल करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पुलिस सिस्टम से वैसे ही अबव होते हैं, बादशाह लोग किस्म के लोग, ठीक है, लेकिन नीचे हर बंदे के ऊपर उन्होंने कैमराज फिट किए हुए होते हैं, और हर बंदे के लिए जो है ना वो इस किस्म का कानून होता है कि बस उसको सजा मिलेगी। तो भाई इस वजह से वहां पर अगर क्राइम रेट्स कम हैं तो इसका इतलाक जो है वो आप बाकी दुनिया पे तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मिसाल के तौर पर सिंगापुर को जैसे अगर आप कोट करें, तो भाई सिंगापुर क्या है, निक्का सा एक छोटा सा जो है वो शहर है बेसिकली, ठीक है, तो आप उसको कोट कर उसको आप यानी कयास कर रहे हैं आप पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर, और जो है वो यूरोप के किसी मुल्क के ऊपर, या अमेरिका के किसी मुल्क के ऊपर, तो वो तो भाई बहरहाल इसकी तो रोज रोशन की तरह ये बातें आया है, हम इनकार कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जख्मों के कसास का भी यही हाल है, ये बात आप पहले मालूम कर चुके हैं कि हदूद और कसास के साकित हो जाने से लाजमी आता है, हमने पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ तक, एक मिनट रह गया, यहाँ तक शरी सजाओं, हदूद, कसास और ताजीरात की इस्तेलाहात शरिया और उनके मुतालिक जरूरी मालूमात का बयान हुआ, अब उनके मुतालिक आयात की तफसीर और हदूद की तफसील देखिए। पहली आयत में इन लोगों का उन लोगों की सजा का बयान है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुकाबला और मुहारबा करते हैं और जमीन में फसाद मचाते हैं, तो ये फिर इंशाल्लाह हम अगली क्लास में ही देख लेंगे, इसमें यहाँ पे कुछ लिखा है। तो आप इतने लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, नाम चेंज कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके मैसेज से मुझे पता चल जाएगा। और सो इफ समवन इज गिल्टी लाइक शी डिड बट देयर आर मॉडर्न वेज कंफर्म नहीं, जिना की हद में लगेगी उसका। एंड इफ देयर आर विटनेसेस बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट डू नॉट सपोर्ट विटनेसेस विल बी और शी गेट अडॉप्टेड। फिकह की किताबों के अंदर फिर इसकी तफसीलात मिल जाती हैं, और ये फिर आपको देखना पड़ेगा कि आजकल उसके ऊपर किस किस्म का हुक्म सादर हो रहा है। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए से जो है वो साबित करता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इस वक्त में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए से जाना वो सबूत को साबित करने से हद जो है वो नाफिज न किया। ठीक है, वैसे तो थोड़े दिन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, वैसे भी अब तो AI आ गई है, तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर आप एतमाद तो अब आम बंदा भी समझना शुरू हो गया कि आप टेक्नोलॉजी को एतमाद नहीं कर सकते। ठीक है, और चंद दिन पहले AI का नाम इतना नहीं सुनने को मिलता था, लेकिन वो डीप फेक का नाम बहुत सुनने को मिलता था बगैर AI के नाम के इस्तेमाल किए हुए। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर किस किस्म की आप जो है वो ट्रस्ट कर सकते हैं? चंद दिन की बात थी, चंद दिन की क्या कहते हैं चांदनी थी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चांदनी भी जो है ना वो खत्म होनी शुरू हो गई है। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता चल गया है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, 4 दिन की चांदनी। ठीक है, यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।